उपचार में भेद और अभेद है, यथातथ रूप में वो निर्विशेष परम तत्व एक है, निर्विशेष निर्गुण अनादि निरंजन। उस समय में भेद अभेद, जब भेद ही नहीं है तो अभेद की क्या बात, वो एक ही है। क्या चीज है? कुछ नहीं है, सत भी नहीं असत भी नहीं कुछ नहीं। इसलिए ये भेद होता है कहां पर? इस जगत में यह दिखता है कि जीवों से, ब्रह्म से जीव का भेद है, ब्रह्म से जगत का भेद है। यह औपचारिक मात्र है। जीव मुक्त हो जाएगा तो भेद नहीं रहेगा, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। इसलिए इसको औपचारिक कहते हैं, व्यवहारिक। और एक प्रतिभाषिक विज्ञान भिक्षु का, वो भी अद्वैतवादी, अद्वैतवादी है। स्वरूपतः एक होकर इस जगत में विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित होता है, दिखता है। माया और जगत, ये सब जो जीव हैं, कुछ है ही नहीं, केवल प्रतिबिंब की भांति। जल में सूर्य लाख रूपों में प्रतिबिंबित होता है, तो वो लाख रूप का कोई भी रूप सूर्य का रूप नहीं है, लाख रूप में प्रतिबिंबित होता है नहीं? और जबकि वो हिल जाएगा तो दिखेगा जो नहीं है। सूर्य हिलता है, प्रतिबिंब कभी छाया से ढक जाता है, हिलता है ना। पेड़ भी हिलते हैं पानी में, किंतु पेड़ हिलता है। चंद्र और सूर्य क्या हिलते हैं, किंतु प्रतिबिंब में वो हिलते दिखाई देते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्मा का ये प्रतिबिंब जहां पर है, इसमें भेद अभेद है, भेद भी है अभेद भी है। अभेद इसलिए कि वो मूल का छाया है, प्रतिबिंब है, इसलिए भेद है। और अभेद कहाँ है? उसी की छाया, वही वस्तु है। वो नहीं रहता तो ये होता नहीं, किंतु वो हिलता नहीं, ये हिलता है। जब बिंब हट जाएगा तो ये प्रतिबिंब भी हट जाएगा। जैसे रात हो गई, सूर्य का प्रतिबिंब नहीं होगा। इस तरह से ये दोनों वस्तुएं तो एकदम मिथ्या, कौन औपचारिक और प्रतिबिंब, किंतु ये ठीक है। किंतु ठीक होने पर भक्त जी गोस्वामी ने उसका खंडन किया है, इन सब का, तीनों का। और उन्होंने महाप्रभु के विचार के अनुसार में अचिंत, भेद और अभेद, शक्ति के परिणति के ऊपर में ये किया। जीव और जगत ये सब शक्ति से, शक्ति के परिणाम है ये। इसलिए ब्रह्म निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं हुआ। जैसा कर कैसे, जैसे कस्तूरी से गंध निकलती है, यदि एक ही चीज होती तो कुछ दिनों के बाद में खर्च हो जाने से क्या होता है, वो खत्म हो जाती वस्तु। जैसे इसमें जितनी भी लाइट निकले, लाइट खत्म होगी नहीं होगी, क्योंकि इसे एक ही है। जब तक वो रहेगा तब तक इसमें लाइट रहेगी, उसमें किरणें रहेंगी, प्रकाश रहेगा। एक सेंट ले लो, सेंट है ना, इतर, उसको रुई के फाहा में लगा दो और रख दो। जब लगाया तब तब सुगंध निकल रहा है, और 5-6 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में जब उसको सूंघो तो आएगा, ये क्या हुआ, आगंतुक है, उसमें वो चीज नहीं है, उसे पीछे से लगाया गया है, ये आगंतुक है। ये जी गोस्वामी कहते हैं, इसी तरह से वस्तु की शक्ति और शक्ति से परिणत चीजों में और ब्रह्म में भेद भी है, अभेद है, अभेद भी है। जैसे कस्तूरी का गंध, जब तक कस्तूरी रहेगी उसमें स्वाभाविक रूप से गंध रहेगा। ऐसा भी हो सकता है ये कस्तूरी का गंध किसी दिन उड़ जाए पूरा, ऐसा हो भी सकता है। बहुत पुरानी हो जाए धीरे 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 तो क्या होगा, उतना सुगंध नहीं, किंतु वस्तु का स्वभाव है ना, वो दूर नहीं होगा। ऐसे ही जी ब्रह्म की शक्ति से ये जीव रूपांतरित हुआ है, उसे भेद भी है। जैसे कस्तूरी से और गंध, वो गंध को बहुत दूर तक सूंघा जाता है और कस्तूरी यहाँ पर रखी है। जैसे उपमा दिया, हमारे शरीर में आत्मा है या मन है? मन कहाँ पर है? यदि मान लो कि मन यहाँ पर है तो पैर में कोई चीज़ क्यों लगता है? और यहाँ पर मन है और यहाँ पर कोई चिमटी काटता है, कोई सुई चुभाता, तो कितने कितना देर लगती है उसको वहाँ अनुभूति होने में? तो मन कहाँ है? अच्छा, और अब हृदय, आत्मा के लिए विचार करो, आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, एक केस को सत भाग करके फिर एक भाग को फिर सत भाग करो, तब तक कितना हुआ? 100 × 100, उसमें भी उससे भी छोटा जीव। तो ये कहीं एक शरीर में तो कहीं ना कहीं तो होगा। आलोकवत वेदांत सूत्र में बतलाया, जैसे बल्ब जल रहा है इसके प्रकाश सर्वत्र है, ऐसे उससे भी छोटे ब्रह्म जो हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, वो उस जीवात्मा के भी पार्टिकल में रहते हैं और समस्त विश्व को जानते हैं। इसलिए आत्मा कहाँ है? कहते जी हृदय में। हृदय कहाँ है? हृदय किसको कहते हैं? इसको सहस्त्रार कहा गया है, सहस्त्रार। जैसे आरी होती है ना, बड़ा वाला आरा, जिसमें कटे कटे हुए धार होते हैं, सहस्त्र धारा होती है करात में, और उसी को चक्र मान लो, चक्र के चारों तरफ में धार ही धार है। ये जो खुरा है ना, अस्तूर, अस्तूरा, एक बार बाजी लगी दो बड़े विवेकवान व्यक्ति में, बुद्धिमान लोगों में, अस्तूरा मैंने जो छूट कमाते हैं लगा, इसमें धार है, वो सीधा है या टेढ़ा टेढ़ा दिखता है जो खूब तीक्ष्ण धार, किंतु सीधा नहीं है, नहीं तो वो कटता नहीं। वो क्या चीज है? बारीक बारीक ऐसे कर्विंग है, खुरे, यही तो, यही तो है, खुद प्लेन नहीं होता ये ब्लेड,
ब्लेड
ये बराबर उसका नहीं होता, उसमें छोटी 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 ऐसे ऐसे रहता है, देखा नहीं, तो वो सब दिखाई पड़ेगा। तो वैसे ये जो मन है, मन और हृदय में थोड़ा सा अंतर है, है एक ही चीज। मन को कहते हैं हृदय स्थली, अंगुष्ठ मात्र यहाँ पर खाली जगह है उसमें, और कोई कहते नहीं, जब पोस्टमार्टम होता है हृदय को निकाल लेते हैं, उन्हें खाली स्थान में ही वो भगवान या आत्मा रहती है। यहाँ उसका मूल सेंटर है, किंतु इससे इसका ये शाखा ऑफिस है और हेड ऑफिस है यहाँ पर, यहीं से पंपी और जो कुछ होता है भावकता इत्यादि जो कुछ, ये यहाँ से उत्पन्न होती है। तो आत्मा एक जगह रह करके भी आलोक की भांति, प्रकाश की भांति सर्वत्र एक समान होता है, और वो कृष्ण मध्यम आकार में कृष्ण के रूप रहते हुए समस्त विश्व के एक एक पत्ते में, एक एक अणु में, गोलोक वृंदावन से लेकर के यहाँ पर अखिल विश्व ब्रह्मांडों के समस्त वस्तुओं में कैसे सबसे छोटा है। अणिरप अणियान महतो अपि, इसलिए उस ब्रह्म की अनंत शक्तियाँ हैं जिसमें प्रधान तीन हैं और उनकी प्रधान वृत्तियाँ भी तीन हैं। वो है क्या? चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां, संवित, संधिनी और अनादि। इसी के द्वारा सब कुछ भरा पड़ा है, जितनी सत्ता है, जितने भाव हैं, जितने जितना आनंद है, सब इसी के फ्रैक्शन, कहीं विकार कहीं शुद्ध रूप। इसलिए इन चीजों से, कृष्ण का शक्ति से प्रकाशित होने वाले वस्तुओं से और शक्ति से, और प्रभु का अचिंत भेद और अभेद भी है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं। ये शास्त्र भगवान के नासिका से निकला हुआ है, वेद। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तेन, आया ना एकादश स्कंद में। भगवान ने अपने को प्राप्त कराने के लिए जीवों को जो सरल सहज उपाय बतलाया है, वही भागवत धर्म है। गीता क्या है? श्वास से निकला हुआ नहीं है, मुख की वाणी। वैसे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है, वो मुख से निकला हुआ, अत्यंत उन्नत उत्तम वो सब चीजें हैं, वेद से भी अधिक महत्वशील। इसलिए श्वास से निकला हुआ जो वेद है, उससे मुख निश्चित भागवत और गीता श्रेष्ठ है। गीता अर्जुन को सुनाया और भागवत उद्धव को सुनाया, एकादश स्कंद इत्यादि उनके भक्तों ने सुनाया। तो इसलिए जीव गोस्वामी ने जो बतलाया, अचिंत भेदा भेद, वेद भी है ब्रह्म के साथ में जीव का, क्योंकि शक्ति है ना, और अभेद भी है। अभेद है केवल चिद दृष्टि से, क्वालिटी में एक, क्वांटिटी में कुछ अंतर है। भेद जैसा दिखता है भेद नहीं है। भेद कहते हैं दो पृथक वस्तु, सत्ताशील वस्तुओं में जब कोई पार्थक्य होता है उसको कहते हैं भेद। और जब एक ही वस्तु के अंदर में भेद सा प्रतीत होने वाली कोई जो धर्म होता है उसको कहते हैं
वैशिष्ट्य।
इस चीज को नहीं समझने से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। गुरु जी से हम लोगों ने ये सब चीजों को सुना, इसलिए अभी तक पुष्ट होता जा रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं विषय पर, प्रकृत विषय पर। उन्होंने कल संदेह उत्पन्न किया, एक संदेह उठा। राधा और कृष्ण दोनों नहीं थे, उनके पहले हलादनी शक्ति कहां से आ गई? बाप और मैया नहीं थी, बेटा हो गया, ये कैसे संभव है? कहते जी इस जगत में बाप के बिना, बेटे के बिना मैया नहीं होगी। कभी कभी इसका व्यतिक्रम भी देखा जाता है। कुंभ से कौन हुआ?
अगस्त
ऋषि और वशिष्ठ ऋषि दोनों, उसी कुंभ में से, इसलिए दोनों ही कुंभ जैसे हैं।
कलसी से
और हैं?
कलसी,
कलसी माने कलश, उसमें पानी था उसमें से कुंभ। नारद इत्यादि कैसे हुए? ब्रह्मा के लिए मानस पुत्र कहे जाते हैं, कौन तो यथार्थ मानस पुत्र हैं या नहीं? ब्रह्मा जी से बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे, ये गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे, राधा जी के भी दर्शन कर लेंगे।
तो ब्रह्मा जी भी ब्रज में आए
किंतु नारद जी जैसा नहीं, बाई चांस आए और अपराध कर डाला। उन्होंने खुद ही कहा, तो हम लोग क्या कहें, दीनता बस्ता कह रहे हैं। किंतु है बात तो भी तो फैक्ट है, ये सृष्टि करने के लिए योग्य जीव में ब्रह्म भगवान का आवेश है, रजगुण का, ये ब्रह्मा है जीव में सबसे श्रेष्ठ है। किंतु मिश्र सत्व है, अभी इसमें हमने बतलाया था कल, मिश्र सत्व है ब्रह्मा और शंकर तत्व, और विष्णु जो शुद्ध है शेष तक ये लोग शुद्ध हैं। और कृष्ण तो स्वयं विशुद्ध से भी विशुद्ध है, पूर्णतम तत्व है। तो राधा कृष्ण तो थे ही नहीं, तो उनमें जो प्रेम था वो प्रेम कहाँ से रहेगा? और फिर उसकी जो प्रणय विकृति, जो प्रणय की जो विकृति है वो कहाँ था? किंतु फिर भी प्रणय था, उसकी विकृति भी थी, वो थी हलादिनी। इस जगत की दृष्टि से इसकी मीमांसा संभव पर नहीं है। पेड़ नहीं रहा फल मिला के, और फल नहीं है किंतु पेड़ हो गया। कोई कहते हैं जब पहले फल है कि पहले पेड़ है? इस जगत में ये बड़ी भारी समस्या है, प्रॉब्लम है, किंतु उस जगत में प्रॉब्लम नहीं है। इस जगत में भी प्रॉब्लम नहीं है, जो जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम।
जगत में क्या है?
इस जगत में फल भी है और पेड़ भी है, और उस जगत में तो है ही है। इसी वहां से यहाँ का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। असल में कारण से ही कार्य होता है। फल को कारण कहा गया है, बीज को, इसलिए बीज को तो मानना ही पड़ेगा। ये सारे जगत के बीज कृष्ण हैं, इसलिए पहले बीज ही को लेकर के फिर उस कारण को कहा गया। कारण समाप्त हो जाएगा तभी बीज के रूप में रहेगा। तो कहते हैं इसकी मीमांसा उन्होंने कहा किया, देखो प्रकृति के अंदर में देश और काल की प्रधानता है। हम लोग भी मनुष्य हैं। वो इंग्लैंड, अमेरिका, जापान के भी लोग मनुष्य ही हैं। बोल चाल भाषा एक नहीं, उनका भी क्षिति चल पंच तत्व का ये शरीर है। उनका शरीर देखो जो किसी का पीला किसी का लाल, हम लोगों का कुछ काला कुछ फेयर कुछ थोड़ा सा, अपने आप देख करके ही बताया जा सकता है कि किसका चेहरा कैसा है। मणिपुर और चीन का फेस कुछ मिलता है, इसलिए वो लोग चीन वाले कहते हैं कि मणिपुर हम लोगों का चीन का ये प्रदेश भूभाग है। आसाम वालों का भी कुछ मिलता है उनसे, वो लोग एकदम पीले होते हैं ये कम पीले, किंतु दोनों का मुख इत्यादि देखने से आंखें छोटी छोटी कुछ गड़ी हुई, कुछ मुख चपटा चपटा। बंगाल में आ जाओ वही मनुष्य, वही लंबी लंबी कमल नैनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, कुछ काले भी कुछ गोरे भी, किंतु ये सब कुछ देश के ऊपर में निर्भर करता है। काल के वजह से हम लोग सब कुछ काल के ऊपर में प्रभावित हैं। अभी 12 बजे रात हो जाए ना तो क्या होगा? देखिए सब लोग सो रहे हैं, जहाँ सवेरा हुआ धीरे धीरे लोग उठना, ये सब काल है। काल के वजह से सुख दुख इत्यादि जो कुछ शत्रु मित्र हानि लाभ जीवन मरण, ये सब काल के द्वारा है। भगवान ही काल के रूप में है, तो इसलिए कहते हैं इस जगत के काल में और देश में ये सब चीजें हैं। क्या चीज? सामंजस्य नहीं कर सकते, जन्म है और जन्म नहीं भी है, ये सब चीजें। वृद्ध तरह का गुण, बड़ा सहनशील और बड़ा क्रोधी होगा, किंतु ये सब चीजें कृष्ण में तस्मिन् न चित्रम्, वृद्ध धर्मम ना, उसमें वृद्ध धर्म सभी है। जन्म नहीं है, जसोदा के पुत्र हैं, काले हैं किंतु कैसे सुंदर हैं, जगत में वैसा और कोई सुंदर नहीं। हाथ पैर नहीं है किंतु चलते हैं, अपाणि पादो जमना गृहीता इत्यादि, इसलिए वहां पर सामंजस्य है, यहां नहीं। इसलिए मन वचन इत्यादि से अगोचर है, इसलिए एक ही साथ में उनका एक प्रकोष्ठ में या एक ही समय में हलादिनी शक्ति भी है और राधा कृष्ण भी हैं, चैतन्य महाप्रभु भी, तीनों एक एक साथ में सब चीजें। जन्मे नहीं हलादनी तबु क्रियाते निपुण, जन्मती नहीं है किंतु, जैसे उदाहरण के लिए देखो, शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, वो अनंग बन गया नंग। ऐसा कोई प्राणी है जो कामदेव के द्वारा बचा हुआ है? देखो तो कितना व्यापक रूप में है, ऐसे ही समझो उन चीजों को। जन्मने के पहले ही राधा कृष्ण को दो बना देता है और फिर दोनों को मिला करके एक महापुरुष के रूप में प्रकट कर देता है। यदि कहो जो नहीं ऐसा नहीं, इन दोनों के पहले केवल कृष्ण थे और राजस्थली में उनके बांग अंग से श्रीमती राधिका निकली। तो कहते जे कैसे हुआ, क्यों क्यों निकली? विलास की इच्छा हुई। अच्छा, कोई भी इच्छा होती है, कोई चीज की अनुभूति से कोई इच्छा होती है, मैं रसगुल्ला खाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है? खाया है ना, उसका टेस्ट तो है, देखने से भी नहीं होगा, वो खाया उसका टेस्ट है। इसलिए समझो, जैसे कृष्ण में नित्य विलास भय, राधा इत्यादि सब चीजें हैं, इसलिए इच्छा हुई। तब तक उनके शरीर में अभिन्न रूप से थी और वही चीज फिर क्या हुआ, बीज के रूप में 100,000 पीपल या बरगद का बीज हम कोटि कोटि इतने में ले सकते हैं, कागज में देखा है बीज कितना सूक्ष्म होता है, और उसी को मट्टी में फेंक दो 10 माइल के अंदर में, 20 माइल के अंदर में, जब बरगद के पेड़ होंगे तो क्या होगा, 10-20 माइल एकदम भर जाएगा। ऐसे ही राधा कृष्ण, राधा जी सब समय कृष्ण में हैं, और कभी जो एक हो जाती हैं अव्यक्त के रूप में कृष्ण के शरीर, ऐसा भी नहीं, नित्य ही है। ह्लादनी शक्ति भी नित्य है, महाप्रभु जी का यह भाव भी, औदार्य भाव, वो भी नित्य है। जगत के जीवों के सामने कभी वो प्रकट होते हैं, कभी ये प्रकाशित होते हैं। इसलिए इसके द्वारा ये नहीं होगा जो पहले राम हुए तो इसके बाद में कृष्ण हुए और फिर इसके बाद में महाप्रभु हुए, ये सब विचार नहीं। राम के पहले भी कृष्ण का होता, क्यों? राम के जन्म के पहले ही राम की पूजा होती थी, ऐसा देखा जाता है, कृष्ण की पूजा उनसे पहले होती थी। दंडकारण्य में अभी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ और गोपाल मंत्र को पा करके कृष्ण के लिए आराधना कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे? उस समय तो त्रेता युग ना, और त्रेता युग के बाद में द्वापर जाएगा, द्वापर के अंत में कृष्ण अभी आविर्भूत होंगे, तो उस समय कैसे संभव था? अरे कोटि कोटि बार ये सब घूमते रहते,
त्रेता युग के महामंत्र में भी कृष्ण का नाम है।
इसलिए यदि कहो जो कृष्ण पहले थे और राधा जी पीछे हुई थी, ऐसा नहीं, तो फिर यह गड़बड़ हो जाएगा सिद्ध। यदि कहो जो नहीं, ब्रह्म के रूप में, निर्विकार के रूप में पहले ब्रह्म था और उनसे फिर यह राधा कृष्ण एक रूप में हुए, ऐसा नहीं, कहें क्यों? ब्रह्म की प्रतिष्ठा जैसा प्रभाव प्रभाव, तो वहां पर भी भगवान की अंग कांति इनको कहते हैं। अंग कांति मैंने कौन से अंग? मुखारविंद का नहीं, कृष्ण के चरण कमलों के अंगुली की लास्ट अंगुली, कनिष्ठ अंगुली की अंतिम नख की ये प्रभा, वो भी शुद्ध प्रभा नहीं, विकृत विकृत प्रतिफलन है ये ब्रह्म, जिसमें मुक्ति के लिए लोग लालायित रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। उस ब्रह्म से कृष्ण पैदा होंगे, इसलिए ये भी ठीक नहीं, क्योंकि उनकी अंग कांति है। यदि कहो जो परमात्मा के रूप में थे, जैसे कि चतुर्श्लोकी भागवत में देखा जाता है, अहम एव असमेवाग्रे यत नन्नत सत असत परम पश्चात अवशिष्यते सो अस्मः। सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के समय में भी मैं हूँ और सृष्टि के समाप्त होने पर जो कुछ बच रहा है वही शेष के रूप में अनंत के रूप में मैं हूँ, मैं ही था सब। नारायण एव आशित, नारायण ही एकमात्र थे, दूसरा कोई भी नहीं था। नो ब्रह्मा, नो ईशानो, नो इंद्र आदि देवता, कोई भी नहीं, केवल मात्र ये नारायण। नारायण उपनिषद में ऐसा नारायण मैंने, यहाँ पर कृष्ण एक ही तत्व। इसलिए यदि कहो जो परमात्मा के रूप में है और उनसे ये हुआ तो ये भी ठीक नहीं। परमात्मा तो उनके अंश हैं, जिसमें केवल मात्र सत और आंशिक रूप में चित, बस यही दो, आनंद की अनुभूति विलास इत्यादि नहीं, इसलिए उनसे भी नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को स्वयं कृष्ण ही समझना और राधा दोनों को मिलित हुए अरुण, इसलिए सब समय ये रहेंगे, रहते हैं और अभी भी हैं। बतलाया राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति स्मात एक आत्मा नाव भूपुरा देह वेदम गतौतौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं चैत्यमाप्तम राधा भाव द्युति सबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। नौमी कृष्ण स्वरूपम, ये किसकी वंदना है? चैतन्य महाप्रभु की वंदना है। करें कि हे कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण ही स्वरूप, स्वरूप से कृष्ण, मैं आपकी पुनः पुनः वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे? आप जो कृष्ण स्वरूप हैं, राधा भाव द्युति सुबलितम, राधा जी के भाव और द्युति माने अंग कांति द्वारा सुबलित। सुबलित किसको कहते हैं? सुबलित माने जैसे तदात्म भाव होता है, अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, सुबलित उसके द्वारा, बलित माने उसके द्वारा ओतप्रोत, ऐसे जो कृष्ण स्वरूप हैं राधा भाव और अंग कांति से दे दीप्यमान, वही चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। क्यों? राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति, राधा कृष्ण की प्रणय की, प्रेम की विकृति, इसको कहते हैं ह्लादिनी शक्ति। इस ह्लादिनी शक्ति का सार मंथन है प्रेम। प्रेम क्रमशः स्नेहमान प्रणय भाव अनुराग महाभाव तक ये वृद्धि पाता है। यही महाभाव दो प्रकार का, रूढ़ और अधिरूढ़। उसमें जो अधिरूढ़ महाभाव है उसी का एकदम रूप है, सॉलिड रूप, यह श्रीमती राधिका जी। अभी हम लोग सुन रहे हैं, अभी विज्ञान नहीं हो रहा, जिस समय विज्ञान हो जाएगा उसमें तन्मय होकर के उन चीज को साक्षात दर्शन करेंगे, उसका अर्थ बतला रहे हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, राधा कृष्ण एक ही तत्व वस्तु है, अद्वै ज्ञान पर तत्व, एक है पूर्ण शक्तिमान और दूसरा है पूर्ण शक्ति, दोनों में कोई एक अंतर भी, एक तनिक भी अंतर नहीं है, केवल विलास के द्वारा अंतर साथ दिखता है। जैसे एक समुद्र, उसमें लाखों लहरें और क्या लहर के तुम्हारा की बोलो ढेव, तरंगें, छोटी बड़ी तरंगें निकलती हैं, तो वो तरंगें कोई अलग नहीं है, समुद्र को वर्धन करने वाली होती है। आनंदाम बुद्धि वर्धन, तरंगों से आनंद की अम्बुधि, आनंद का समुद्र वर्धित होता है। ऐसे इन समुद्रों में तरंग अलग से नहीं है, वो समुद्र का पानी ही तरंग के रूप में उसको उच्छ्वलित करता है। एक ही आत्मा और दो शरीर धारण किया, अन्य अन्य विलास रस आस्वादन करी, ये तो हो गया था। राधिका हैन कृष्णे प्रणय विकार स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नाम जहा, ये स्वरूप शक्ति हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं जोग माया स्वरूप शक्ति, उसी के द्वारा ये कृष्ण की जितनी भी लीलाएं, तो किसको माना जाए? स्वरूप शक्ति, राधा जी की स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति योग माया है, ऐसे ली गया। तरादि कहन कृष्ण प्रणय विकार स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नाम जहा, ह्लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, ह्लादिनी द्वारा करे भक्ति रपोषण। कृष्ण स्वयं उस आनंद ह्लादिनी शक्ति के द्वारा आनंद को उपभोग करते हैं और प्रत्येक जीवों में वही आनंद का एक एक किरण विक्षिप्त होने पर वो भक्ति प्रेमा भक्ति का नाम धारण करता है और कृष्ण को वही आकर्षण करता है। यह राधा जी की वृत्ति है, जीव की अपनी नहीं, जीव के आधार पर प्रतिफलित होकर के कृष्ण को आकर्षण करता है। पहले वो प्रेम, वो जो प्रेम है पहले श्रद्धा के रूप में, बीज के रूप में फेंका जाता है। कौन फेंकता है? ये स्वरूप शक्ति। क्यों सोचती है जी अकेले मेरे द्वारा नहीं आनंद देना, कृष्ण को सब प्रकार से आनंद दे। जैसे वही राधिका जी हैं कृष्ण के साथ में हैं, चंद्र उदित हुआ, पूर्णिमा का चांद, और उन्होंने अपनी किरणों से सब दिशा रूपी अपने वधु का गुलाल लगा दिया मुख में, चारों सब दिशाएं एकदम लाल जैसी हो, सुंदर भीर समीर बहने लगा। क्या कैसा? क्या धीर समीरे, वो सुगंधों के भार से और जमुना की शीतलता को लेकर के वो थोड़ा सा जरा उस पर भार अधिक हो गया, वो गिरता उठता चलने लगा। और उस समय में रात में भी जितने प्रकार के फूल हैं एकदम पूर्ण रूप से विकसित, कदम्ब का पुष्प है, चमेली, बेली, जूई इत्यादि सब सुगंध से भरपूर हो, भौंरे एकदम गुंजार करने लगे, और कोकिल के जब कान में गया और नाक में गया तो कोयल भी पगली सी हो गई और वो मदमत्त होकर के भी कुहुकना आरंभ कर दिया। पंचम तान से मयूर नित्य करने लगते, जमुना का उपकूल कैसा हो गया, मन शुभ्र हिम कण बिछा दिए गए हैं शुभ्र, ये वातावरण, और लाखों गोपियां परम सुंदरी किशोरियां एक एक से एक रूपवती गुणवती लावण्यमती गोपियां वहां पर उपस्थित हुई। उस समय कैसा वातावरण हो गया, तब ये रास हुआ। रस से रास, रस कदम्ब इति रास, रस का कदम्ब, कदम्ब माने समूह, कौन सा रस? वही अप्राकृत रस दो मिलने में विलास के द्वारा जो रस होता है उनका समूह, नित्य गीत इत्यादि आलिंगन इत्यादि सब रास में, इसलिए इसको रस का समूह जी गोस्वामी जी कहते हैं। ये तब हुआ रास, रस का दम्बाना। इस तरह से यह है विलास, इसलिए विलास दोनों विलास में आस्वादन करने के लिए अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी, दोनों रस का आस्वादन, और उसका छीटा जगत में जब चैतन्य महाप्रभु लाते हैं समस्त जगत भी इसी प्रेम से प्लावित हो। ए बन न्याय जैन भाषे से जीव छार, कोटि कल्पे नहीं तबे तहार निस्तार। महाप्रभु जी के प्रेम में यदि उसका एक कण नहीं हमको स्पर्श किया इस लीला में, अभी उसकी धारा चल रही है, उसकी हवा अभी भी है, कल युग समाप्त होने पर शायद वो बंद हो जाए, अभी बहुत थोड़े दिन में। इस भाव में यदि कोई नहीं आ सका महाप्रभु जी या महाप्रभु जी के परिकरों की कृपा को लाभ नहीं कर सका तो जीवन उसका बेकार गया। इस तरह से ह्लादिनी स्वयं करती है, कृष्ण को आनंद देती है, और क्या करती हैं, जीवों में अपनी किरणें दे करके सबको आनंदमय बना करके ह्लादिनी शक्ति का भाव, और उसी को भक्ति के रूप में विकसित करके प्रेम के रूप में परिवर्तन करके कृष्ण का भोग करा दे, कृष्ण को भोग करा दे। उसको देख करके और आनंद होता है। एक लड़का है, छोटा सा बच्चा, मैया की गोद में, पिता की गोद में कहीं गया। जहां पर गया उन लोगों ने बच्चे को प्यार से बुला करके और उसके हाथ में एक मिठाई या एक खिलौना दे दिया। लड़के को जितना आनंद हुआ उसको देख करके माता को आनंद अधिक हुआ न कम हुआ? बेटे से भी अधिक मैया को आनंद हुआ। बेटे का मुख मुस्कुराना देखा और देखा जे बेटे को प्यार करती हैं, और बेटा प्रसन्न हो गया तो मैया 10 गुना उस बेटे से प्रसन्न हो गया। राधिका यही, कृष्ण उनके प्रेम के पात्र हैं, किंतु जब देखते हैं कि ये जीव मात्र ही इतनी गोपियां कृष्ण को आनंदित कर रही हैं, तो उनसे भी कोटि गुण राधा जी को आनंद। और राधा जी को जब देखती हैं ये सब गोपियां ये कृष्ण को आनंदित कर रही हैं और कृष्ण इनको आनंदित कर रहे हैं, तो अपना जितना आनंद होगा उससे कोटि गुण इनको भी आनंद होता है। हम लोग इसको भाषा के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, साधन के द्वारा कुछ समझ सकते हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, सच्चित आनंद से परिपूर्ण, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो उनमें नहीं है। यही ज्ञान पीछे से भाव का रूप धारण करता है, यही भाव धारण का रूप धारण करके अंत में महाभाव बनता है। कृष्ण का स्वरूप विशुद्ध सत्व, और उसमें ये भाव, और उसमें ह्लादिनी का आनंद, इसलिए तीनों के रूप में ये सच्चिदानंद परिपूर्ण रूप में है। राम भी भगवान हैं, राम भी ये सब चीजें हैं, किंतु पूर्णतम प्रकाश उस विग्रह में नहीं है। एक ही चीज शक्ति तारधरे तीन रूप, आनंद अंशे ह्लादिनी, सदन से संधिनी, चित अंशे संबित, जर ज्ञान कर। कोई भी वस्तु नहीं है जगत में जिनमें कुछ न कुछ ये चीजें विकृत रूप में, शुद्ध रूप में, परिपूर्ण रूप में न हो। बोलो बैकुंठ वृंदावन धाम में परिपूर्ण रूप से, बद्ध जीव के अंदर में कुछ कुछ, और इस जगत में भी कुछ है। हम लोगों को ये जैसे चीनी है उसमें पानी मिला दिया, उसमें थोड़ा सा केवड़ा दे दिया, उसमें नहीं तो नींबू दे दिया, काली मिर्च दे दिया, और भी कोई चीज सुगंधित दे दी, उसको पान करते हैं जो आनंद आता है। ये आनंद कहाँ से आया उस पानी में भी और इन सब वस्तुओं में कहाँ से आया? यही उस ह्लादिनी का विकृत रूप है, उस जगत में है। स्त्री पुरुष और परस्पर में, बच्चे इत्यादि के साथ में जो प्रेम सा दिखता है, जो मोह माया ममता है, असल में है क्या? इसमें भ्रंश रूप में है, जीवों में मिश्रित रूप में है, और भगवान में और परिकरों में वो सुखी। सभी चीज सत्ता का भी ऐसे ही समझो, ये संधिनी का भी वैसा, संबित का भी वैसा, और ह्लादिनी का भी वैसा। ये तीनों चीजों से ही ये जगत में सब कुछ है। ह्लादिनी संधिनी संबित त्वयेको सर्वसंस्थिते लात ताप करी मिश्रा तई नो गुण वर्जित, विष्णु पुराण में कहा गया है। महादेव जी इसको बतला रहे हैं, किसको बतला रहे हैं? पार्वती जी को या भक्तों को बतला रहे हैं? कुथा है शंकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं क्या? सर्वसंस्थितौ, आप विश्व के जो कुछ है सबके अधिष्ठात्री देवता हैं। कौन? विष्णु। विष्णु की स्तुति करें। सर्वसंस्थितौ, आप ही में सब चीज का अधिष्ठान है, आप ही सब वस्तुओं के, सब जड़ चेतन जो कुछ है उसके अधिष्ठात्री देवता हैं। ऐसे जो आप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं। संबित त्वयेको, ह्लादिनी संधिनी संबित त्वयेको सर्वसंस्थितौ, सब में स्थित कर रहने वाले सबके अधिष्ठान आप हैं, आप में संधिनी, ह्लादिनी और संबित तीनों एक विशुद्ध रूप में हैं। ह्लाद ताप करी मिश्रा तोई नौ गुण वर्जिते, हे गुण वर्जिते, हे सतरज तम तीन गुणों से रहित वर्जिते, आप में स्वतरज और तम तीनों नहीं हैं, किंतु ये गुण कहाँ से आए, आए कहाँ से, कहाँ से आए, आए तो उन्हीं से, कैसे उनसे आए, जब उनमें नहीं है तो अंधकार कहाँ से आया, सूर्य से आया, कैसे सूर्य से आया, सूर्य नहीं दिख पड़ने से अंधकार है। ऐसे जहाँ पर भगवान की स्थिति नहीं मालूम होती, नहीं प्रतीत है किंतु प्रतीति नहीं होती, वहाँ पर सतरज तम तीन ये, इसलिए भगवान की सत्ता की अनुभूति नहीं होने पर ये तीन चीजें, यही तो कह रहा हूँ। अंधकार कहाँ से आया, आया कहाँ से अंधकार, कहीं से आता है, सूर्य के अभाव, इसलिए प्रभु का अभाव जहाँ पर बोध नहीं है वही पर सतरज तम। तो आप जो गुण वर्जित हैं, आप में सत्वरज तुम, अच्छा सत्व किसको कहते हैं, सत्व किसको कहते हैं, रज किसको कहते हैं, तम किसको, इसको थोड़ा सा समझो। सत्व कहते हैं जिन चीजों से चित्त प्रसन्न हो जाता है इस जगत में, चित्त तो मैटेरियल है ना, जड़, किंतु प्रसन्न हो जाता है तो उसको सत्व समझो। रज किसको कहते हैं, जिससे जन्म इत्यादि होता है, अहंकार होता है उसको कहते हैं। और तम जिसमें क्रोध इत्यादि ये सब वस्तुएं होती हैं, दुर्गुण ये सब, ये तम है अंधकार शक्ति। चित्त की प्रसन्नता जिससे होती है ये इसको सत्व, जैसे स्वादिष्ट गाय का दूध है, ये क्या है, सात्विक की राशि की तामसिक, रसगुल्ला क्या है, दिखने में दूध से स्वादिष्ट किंतु है क्या, और चटर पटर माने जो फूची, फूची जानता है, तेतुल का, इमली का खटाई दे करके उसमें और स्वादिष्ट करके और उसमें उड़द की दाल में दे करके चटर पटर बना लेते हैं, ये सब क्या है, तुमको नहीं लगता है किंतु सब लोगों को ये सब देखा। एक दिन कार में जा रहा था, एक आदमी ने देखा, बहुत बड़े घर धनी घर का लड़का, जब देखा उसके मुख में पानी आ गया, महाराज मैं भी आ रहा हूँ, मैंने सोचा जी पेशाब करने के, और वो जा करके वो सबको खरीद कर लेकर के गठरी में बांध करके ले आया और चुपचाप से रख दिया। मैंने देखा जी वही चीज़, देखा जी वहीं से ले आ रहा है, बड़े वही हुआ एक ही फलों में हरितकी, हर्रे, आंवला, बहेरा, इसको सात्विक माना, आम को राजसिक माना गया जो टेस्टिक टेस्टिक, और तामसी कौन है, इमली है, एक वो होता है कैंत, खट्टा मीठा कैंत, और सब ऐसी चीजें हैं। इस तरह से ये सब चीजों में, मनुष्यों में ब्राह्मण स्वभाव वाले व्यक्ति सात्विक, क्षत्रिय वाले लड़ने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति राजसी, ये गीता में ये सब चीजें अच्छी तरह से बदला। मनुष्यों को सात्विक भाव ग्रहण करना चाहिए, यही सात्विक आधार भूमि बन जाती है विशुद्ध सत्व का, यहीं पर विशुद्ध सत्व प्रकट हो सकता है, इसलिए इनकी जरूरत है। तो इसलिए कहते हैं आप में ह्लाद माने चित्त को प्रसन्न करना, ताप चित्त को दुखी करने वाला, ये जो सात्विक और राजसिक और तामसिक ये जो गुण हैं, आप जो गुण वर्जित हैं ये तीन गुणों से रहित आप में नहीं है, आप में वो क्या है, विशुद्ध रूप में ह्लादिनी, संदिनी और संपित, ये जीवों में है, ये ये मिश्र है क्या ह्लाद चित्त की प्रसन्नता इत्यादि। कभी कभी गंदी चीजों से भी चित्त प्रसन्न हो जाता है जैसे ये कह रहे हैं, वो सब चीजें मिश्र हैं, ये भगवान में नहीं है। तात्पर्य क्या, शुद्ध रूप में ह्लादनी संदनी और संबित जीव में नहीं है, मिश्र रूप में है, उस बद्ध जीवों में। भगवान के विशेष कृपा से और उनके एसोसिएट्स परिकर हैं, तब ये विषय छड़िया कबे शुद्ध में मौन तबे आमी बुझबसी वृंदावन। तब ये आज यहीं तक रहे वंशा कल्पतरुभ्य कृपा गौरांग बलि।